बड़ी प्यारी आयत है, वहुवल्लज़ी अंशालकुम अस्सम वल अबसार वल अफिदा कलीलम मा तशकुरून। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुमको सुनने और देखने की कुव्वतें दी और सोचने को दिल दिए, मगर तुम लोग कम ही शुक्र गुज़ार होते हो। 3 सेकंड आप ख़ुद गौर कर लें इस पे, क्या इसका अमल होगा मेरा आपका। कभी दुनिया में हमें कोई कह के तो देखे कि तुम ना शुक्रे हो, आपके शौहर आपको कह देना बड़ी ना शुक्री और हो तो तुम, तो सर से पाँव में आग लग जाएगी। मालिक कह रहा है तुम कम शुक्र गुज़ार हो। शुक्र गुज़ार कौन होता है? जो नेमतों को उसी रास्ते में लगाएं जो नेमत देने वाले को खुश कर दें। क्या मेरी आंखें, मेरे कान और मेरा दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ है? वही है जिसने तुमको ज़मीन में फैलाया और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। वही ज़िंदगी बख्शता और वही मौत देता है। गर्दिश लैलो नहार इसी के कब्ज़े कुदरत में है। क्या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती? मगर ये लोग वही कुछ कहते हैं जो इनके पहले भी कह चुके, अपने वक्त पे चलते हैं। कहते ट्रेंड ही है ये, पहले कौन है ट्रेंड सेटर्स? ये कहते हैं क्या जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर बनकर रह जाएंगे तो हमको फिर ज़िंदा करके उठाया जाएगा? हमने भी ये वादे बहुत सुने हैं, हमसे पहले हमारे बाप दादा भी ये बातें सुनते आए, ये महज पुरानी कहानियाँ हैं। इस तरह इंसान ख़ुद को तसलियाँ देता है। इनसे कहो बताओ अगर तुम जानते हो कि ये ज़मीन और इसकी ये सारी आबादी किसकी है, ये ज़रूर कहेंगे अल्लाह की। कहो फिर तुम होश में क्यों नहीं आते? इनसे पूछो सातों आसमानों और अर्शे अजीम का मालिक कौन है, ये ज़रूर कहेंगे अल्लाह। कहो फिर तुम डरते क्यों नहीं हो? इनसे कहो बताओ अगर तुम जानते हो कि हर चीज़ पर इक्तदार किसका है और कौन है जो पनाह देता है और इसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता, ये ज़रूर कहेंगे ये बात तो अल्लाह ही के लिए है। कहो फिर कहाँ से तुमको धोखा लगता है? जो हमरे हक है वो हम इनके सामने ले आए हैं और कोई शक नहीं कि ये लोग झूठे हैं। अल्लाह ने किसी को अपनी औलाद नहीं बनाया और कोई दूसरा खुदा उसके साथ भी नहीं। अगर ऐसा होता तो हर खुदा अपनी खल को लेकर अलग हो जाता, फिर वो एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते। दुनिया में ऐसे ही होता है ना, दो बादशाह हों तो कुछ उसके साथ कुछ उसके साथ, तो क्या अल्लाह के साथ एक दूसरा अल्लाह होता तो इतनी इत्मीनान से ये दुनिया का निज़ाम चलता? एक कहता धूप होगी, दूसरा कहेगा नहीं बारिश होगी, चिड़ में तो अब हम ज़रूरी बारिश करेंगे। अभी बारिश शुरू होती तो दूसरा कहता ठहर जो ज़रा मैं इनको ठीक कर, तो फिर धूप आती। कभी वेदर चैनल कुछ बताता कभी कुछ बताता, अरे नहीं वो पहले खुदा का फैसला था अब ये दूसरे का हो गया। कैसी दुनिया होती कभी आप सोचें? एक खाने में दो लोग चमचा फेरने लग जाए ना तो वो या तो नमक नहीं होगा या मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी। तो तौहीद में खूबी है, इसमें फितरत का असूल भी है। जिस जगह मामलात में एक बंदे को डिसीजन मेकर बनाकर बाकी सब की राय साम शामिल हो जाती है वो घर सही रहता है। अल्लाह ने क्यों कहा रिजाल कवामून या ले रिजाल अलैहिन न दर्जा, कि जो मर्द को हस्बैंड को एक दर्जा ओनली दिया है ना, इसलिए दिया है। मसलन आप देखिए ना, शोहर बीवी बराबर होते, एक सूरत ये थी, दूसरी ये थी कि बीवी अपर हैंड रखती तो मर्द नीचे उसका कंट्रोल कम होता, तीसरी सूरत वो है जो अब है, कौन सी बेस्ट है? चौथी होती कोई भी नहीं है, घर के बच्चे ही बड़े बनते रहे। सबसे आसान दर्जा क्या है कि मर्द को एक दर्जा ऊपर दे दिया, क्योंकि वो इमोशन फ्री होता है अक्सर, और सारे मर्द वैसे बीवियाँ अक्सर शिकवा ये करती हैं आप में तो जज्बात आई कोई नहीं है, आप रोमांटिक ही नहीं है, है ना? तो अल्लाह ने ऐसे कूल माइंडेड बंदे को एक हिस्सा आपसे ऊपर कर दिया कि अगर दो में गड़बड़ हो जाए तो फिर जो ये कह ले वो होगा। दुनिया में ये निज़ाम आपको हर जगह दिखेगा, हर मामले में। सफ़र है का तीन लोग हैं ना, तो एक को अमीर चूज़ करो कि कहीं कोई गड़बड़ हुई तो कौन मानेगा? वो इदारा या वो उम्मत कभी नहीं पनपेगी जहाँ हर बंदा कहता मेरी मानो और जो दूसरा माने कहता मैं कोई नहीं माननी, कंधे से उचकाएं या अंदर से उचकाएं कहते हमने कोई नहीं माननी। तो फितरत में तौहीद है, कायनात में तौहीद है। अल्लाह ने एक बनकर इस दुनिया को चला के दिखा दिया कि तुम्हारे काम भी ऐसे ही चलेंगे। मशीर बहुत सारे हैं, माविन बहुत सारे हैं, वज़ीर भी बहुत सारे हैं, लेकिन बादशाह एक ही होता है। ये तो आज की दुनिया में भी ऐसा ही है, दो सदर इकट्ठे तो नहीं रहे, दो बादशाह तो कभी ना हुए, दो क्वीन तो कभी ना आपके मुल्क की हुई, क्योंकि निज़ाम चलता ही इसी तरह से है। पाक है अल्लाह इन बातों से जो ये लोग बनाते हैं। खुले और छुपे का जानने वाला वो बाला और बरतर इस शिर्क से जो ये लोग तजवीज़ कर रहे हैं। अब देखिए लोग अल्लाह के साथ पार्टनर्स बनाते हैं, कभी दो कभी तीन और कभी 4 करोड़, एक धर्म ऐसा है दुनिया में 4 करोड़ खुद खुदा हैं उनके, कितना अल्लाह का ज़र्फ़ है। आपके घर में आपके हस्बैंड साहब एक बीवी और ले आए बस, फिर देखें लड़ाइयाँ, कहते मेरी जगह दूसरी आ गई, दो आ गई, दो हो गई आपकी, पकड़ो इनको। अल्लाह के साथ लोगों करोड़ों को साथ कहते हैं, ये भी देता ये भी करनी अल्लाह, ये खुशी देती ये बारिश देती ये शादियाँ कराती ये बहार की देवी ये उसकी, अल्लाह आपको मुझे ये सर्फ दे दे, अल्लाह की सिफात अल्लाह हमारे अंदर डाल दे, बस मैं तो यही दुआ करती हूँ, इतना बड़ा सर्फ कर दे हमारा। और रब्बी मा तुरियन्नी मा युअदून, रब्बी फला तजअलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन, ये है नबियों की आखिरी दुआ कि अल्लाह जब तू पकड़े तो फिर मुझे ना पकड़ना। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कीजिए कि परवरदिगार जिस अज़ाब की इनको धमकी दी जा रही है अगर वो मेरी मौजूदगी में तू लाए तो ऐ मेरे रब मुझे इन जालिम लोगों में शामिल ना करना। और हकीकत ये है कि हम तुम्हारी आंखों के सामने ही वो चीज़ ले आने की पूरी कुदरत रखते हैं जिसकी धमकी हम इनको दे रहे हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई को इस तरीके से दफ़े करो जो बेहतरीन हो, जो कुछ बातें वो तुम पर बनाते हैं वो हमें खूब मालूम हैं, और दुआ करो कि परवरदिगार मैं शैतान की उकसाहटों से तेरी पनाह मांगता हूँ, बल्कि मेरे रब मैं तो इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आए। इसको हाईलाइट करेंगे। आप कहते हैं मुझसे सब्र नहीं होता, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं इनकी बात सुन के जल के राख हो गई, ये दुआ याद कर लें। इत्फा बिल्लती ही अहसन सैया, ज़िंदगी का असूल बनाएं, मैंने बुराई का जवाब भलाई से देना है। अगर आप हकीकत में इंजॉय करना चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी को, तो आप कहें कि लोग मेरे साथ बुरा करें फिर मैं उनके साथ अच्छा करूँगा, लोग मुझे छोड़ें मैं उनसे मिलूँगी, लोग मुझसे कटें मैं उनसे जुड़ूंगी। ये बड़े आला हौसले वालों के काम है, हर एक नहीं ये कर सकता, और जो ये करता है ना फिर उसको अल्लाह देता भी बहुत है दूसरों से बढ़ के। दुश्मनों के साथ दोस्ती का रवैया अख्तियार करो, मुखालिफों को मुआविन बनाओ, बेगानों को अपना बनाओ। आज हमने अपनों को काटा हुआ है, सिर्फ उनके साथ गलत फहमियाँ और उनके बारे में गलत बातें सोच सोच के। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं दफ़ा बिल्लती या अहसनु सैया, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दो, ईंट का जवाब फूल से दो। दरख्त को पत्थर मारते हैं लोग तो वो जवाब में फल फेंकता है, ये बनो। और अगर मुश्किल लगे तो नफ्स की शरारतों से बना ले। बस सिस्टर्स ने मेरे से कई दफ़ा ये सवाल किया तो मैं सबके लिए इकट्ठा ही एक जवाब दे दूँ। बस कहती हैं फलां कोई है एक ज़िंदगी में मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं उनकी मौजूदगी में खुश नहीं रहती, वो आ जाएं तो मुझे गुस्सा आता है। ज़िंदगी में हर एक के साथ होता है, मान लीजिए हर एक के साथ होगा, जो इंसान है जज्बात रखता है, कोई उसको वैसे भी अच्छा लगेगा ऐसी तो कोई वैसे ही बुरा भी लगता है, कोई बुरा है कि नहीं होता है। इवन आप मैंने देखा बाज माएँ अपने बच्चों में फ़र्क करती हैं, सासें उनको 4 बहू में से 2 अच्छी लगती हैं, 1 नहीं अच्छी लगती है, 1 इट्स ओके होता है। कभी ऐसा हो ये दुआ याद कर ले, रब्बी आउज़ु बिका मिन हमज़ात शयातीन, क्योंकि जो आपको बुरा लगता है या जो आपका वीक पॉइंट होता है ना, शैतान आपको उसके ख़िलाफ़ कर बातें सिखाएगा, ये तेरे ख़िलाफ़ है, ये तेरी दुश्मन है, इसने कुछ कर नहीं दिया, ये ना कर दिया। तो नफ्स के फितनों और शैतान की साजिशों से बचने की ये बड़ी खूबसूरत है, और इसको उठते बैठते भी पढ़ा करें। बस लोगों का दिल हर वक्त ही दूसरों से दुखी रहता है, कुछ लोग होते हैं जो किसी से कभी खुश नहीं मैंने देखे, और इसको अपोजिट भी देखा है, कुछ लोग हैं जिनसे कभी कोई खुश नहीं होगा। दोनों सूरतों में ये दुआ याद कर लें, अपने दिल को टटोलें जाके घर में, कौन मुझे बुरा लगता है, किसकी नेमत देख के मैं जल जाती हूँ, किसको देख के कटती हूँ, किससे मैं अपना एक इनविजिबल किस्म का कंपटीशन करती हूँ। बस ये दुआ करें अल्लाह मेरे दिल से इसको निकाल दे। रियली आप अपने आप को इतना लाइट फील करेंगे, इतना रिलैक्स्ड फील करेंगे कि उससे पहले कभी ना आपने फील किया होगा। और एक वक्त तो आना ही है जब सारे जज्बे बस ही ठंडे हो जाने हैं, वो क्या है, हत्ता इज़ा जा हदहुमुल मौत। अब इन एक आयतों को करते हुए आप बिल्कुल अपने दिल दिमाग को ऐसे कर लें कि जैसे आप स्टिल खड़े हैं और बैठे हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त आयतें हैं। यहाँ तक कि जब उनमें से किसी एक को मौत आती है, काल रब इरजिऊनी, तो वो कहता है कि मेरे रब मुझे वापस पलटा। ये किसकी मौत की बात है, यही शख्स जिसका ऊपर जिक्र हुआ है, जो बुराई का जवाब भलाई से नहीं दे सकता, जिसको हक अच्छा नहीं लगता। वरना क्या होगा, मौत के वक्त क्या कहेगा, ऐ मेरे रब मुझे इसी दुनिया में वापस भेज दीजिए। देखिए मेरे रब कह रहे, इसका मतलब कि रब को मानता था, किस दुनिया में जिसे मैं छोड़ आया हूँ, भाई क्यों, कुछ गुनाह करने हैं, कोई पसंद की फिल्म रह गई है जो देखनी है, कोई शादी करनी है बच्चों की? नहीं, मैं अपने कमल करूंगा, यानी वो दुनिया जो मैं छोड़ आया हूँ मुझे उधर भेज ताकि कुछ नेकियाँ करूँ। कितनी अच्छी ख्वाहिश है, कोई बुरी बात तो नहीं कह रहा, लेकिन जवाब सुन लीजिए मालिक का, कल्ला, नेवर। नोनी का, नेवर, कल्ला, ये कभी नहीं होगा। इन्नहा कलिमतुन हुआ कायलुहा, ये तो बस एक बात है जो ये बोल रहा है, मुराद है कि ये करेगा फिर भी कोई नहीं। इसको दोबारा भी वापस ले आए ना मरने के बाद, ये दोबारा वही करतूत करेगा जो पहले करता था। और ये बहुत बड़ी हकीकत है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, बीमारियां, परेशानियां, बहुत नियतें कर लेते हैं, आज बहुत नेक हो जाऊंगी, अब गीबत नहीं करूंगी, अब झूठ नहीं बोलूंगी, अब फजूल खर्ची नहीं करूंगी, अब अपनी नज़रों की हिफाजत करूंगी, कुछ दिन के बाद दोबारा वैसे के वैसे। अल्लाह कहते हैं इनको ज़रा मैं मौत का एक चक्कर लगवा कर दूसरी दुनिया से वापस भी ले आऊँगा ना, तो ये दोबारा फिर करेंगे वही। और कहा इस दुनिया से आगे जाने का सफ़र टू वे नहीं है, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। अब इन सब मरने वालों के पीछे एक बरज़ख़ ख़ायल है दूसरी ज़िंदगी के दिन तक, यानी जो यहाँ से गया उसने कभी आके नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। कभी आपने सुना किसी ने अपनी फीलिंग सुनाई हो? हाँ, कभी कभी अल्लाह बिल्कुल मौत के मुंह के करीब से ले आता है। एक साथी है हमारी, तो वो किसी वजह से उनको हॉस्पिटल में बेहोश किया गया था, उनका कोई इंटरनल प्रॉब्लम का ऑपरेशन था, लेकिन वो जो इंथीसीजिया दिया जाता है ना उसको उनके दिल ने कबूल नहीं किया, तो उनका हार्ट सिंक होना शुरू हो गया। यानी बजाय इसके कि उनका वो यूट्रस का ऑपरेशन करते, उनका दिल जो था ना वो डूबना शुरू हो गया। तो डॉक्टर्स ने फौरन उनको सप्लीमेंट्स दी, जो भी किया, और फिर दोबारा जब स्टेबल हुई फिर उनको होश दिलाया, तो वो फिर अपनी फीलिंग्स शेयर करती थी मेरे साथ, कि वो जो चंद लम्हे थे जिस वक्त उनको फील हुआ था, वो साफ कहती थी कि मुझे लग रहा था कि मैं आसमान पे जा रही हूँ और मेरी रूह वापस आई है। तो इंसान जब दुनिया से जाने लगता है ना, तो आंखों से पर्दे खुल जाते हैं, फिर याद आती हैं अपनी कमियाँ कोताहियाँ। मा फर्रतु फी जम्बिल्ला, आगे पढ़ेंगे अब सूरह ज़ुमर में, मैंने अल्लाह के हक़ में क्या कमियाँ की। फैज़ा नुफ़िख़ा फिस्सूर, फिर जूं ही के सूर फूंक दिया जाएगा, इनके दरमियान फिर कोई रिश्ता न रहेगा और ना वो एक दूसरे को पूछेंगे। ये वही रिश्ते हैं जिनके लिए हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं, नाफरमानियाँ इनकी बर्दाश्त करते हैं, इनके लाड़ बर्दाश्त करते हैं। कल कोई याद नहीं रहेगा, कोई पूछेगा भी नहीं। फमन सकुलत मवाजीनहू, उस वक्त जिसके पलड़े भारी होंगे वही फलाह पाएंगे। शुरू में क्या था? कद अफलहल मोमिनून, आखिर में क्या आ रहा है? फौलाएका हुमुल मुफ्लिहून, और जिनके पलड़े हल्के होंगे वही लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाल लिया। किसने डाला इनको घाटे में? किसने इनका नुकसान किया? कौन जिम्मेदार है इनकी बैंकरप्सी का? ये खुद। वो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे, आग इनके चेहरों की खाल चाट जाएगी, इनके जबड़े बाहर निकल आएंगे। कभी आपने जला हुआ चेहरा देखा हो ना, तो ये स्किन खिंच जाती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे बंदा हंस रहा है। कभी भुनी भी सिरी देखी है आपने? किसी ने इब्ने मसूद से पूछा था कि ये काले हून जो कलूख क्या सिर्फ कैफियत है, आयत 104 में, तो कहते हैं कभी तूने बकरे की भुनी हुई सिरी नहीं देखी? यही है काले हून, यानी जहन्नुम की आग जब चेहरों को खाएगी ना, तो स्किन तो पीछे चली जाएगी ना जल के, तो ये जबड़े खुल जाएंगे और ऐसे लगेगा कि ये मुस्कुरा रहे हैं। वजह क्या है इतना गुस्सा? अल्लाह इतना नाराज़ क्यों इनसे? क्या किया इन लोगों ने? हम कहेंगे हाय इन बेचारों ने क्या किया था कि अल्लाह इनको आग में डाल के सिरी पायों की तरह भून रहे हैं। और आयत का तर्जुमा है, फिर दोबारा कहूँगी, मैं ऐसी आयतों पे कोशिश करती हूँ कि अपना ज़्यादा कमेंट भी ना दूँ, ताकि आप अल्लाह के कलाम की इंटेंसिटी में ही इसको फील करें। ये चेहरा, ये खाल जिसको सारी ज़िंदगी चमकाते सजाते रह गए, वहाँ कलूह की शक्ल बन गई। वजह, अलम तकुन आयाति तुतला अलैकुम, क्या तुम वो लोग नहीं हो कि मेरी आयतें तुमको सुनाई जाती थीं? फकुन तुम भी हा तुकज़्ज़िबून, और तुम तो उनको झुटलाते थे। बोलो, अब उनकी याददाश्त सारी वापस आ जाएगी, ये तो नहीं कि भूला होगा। कहेंगे कालू रब्बना ग़लबत अलैना शिकवतुना, हाँ हमारे रब, हमारी बदबख्ती हम पर छा गई थी। देखिए रब को कह रहे हैं, रब तो फिर मुसलमान ही थे ना, या कम अज़ कम तौहीद तो थी ना दिल में, रब की पहचान तो थी ना। कहते हाँ पता तो था, लेकिन बदबख्ती काम आ गई आगे। بدبختی چھا گئی، وَكُنَّ قَوْمَ الضَّالِّينَ، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال. کہاں سے؟ جہنم سے. سانس گھٹ رہا ہے، سفوکیشن ہو رہی ہے، دم گھٹ رہا ہے، گرمی لگ رہی ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں. ہاں فائن ادنا فائن نہ ظالمون، اگر ہم پھر ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. بھیگی بلی بنے ہوئے نا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سوری پلیز معاف کر دیں، اب ہم ایسا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں تو جواب سن لیجئے، قال اخسؤا فیھا ولا تکلمون. اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. اخسا عربی زبان میں کتے اور سور کو پیچھے تھتکارنے کے لیے آتا ہے. کبھی کو جا رہا اور پیچھے کتا پڑ جائے نا تو پتھر اٹھا کے نا ایسے اس کو کرتا ہے، ہس 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 ہس. یہ ہے لفظ اخسا. اللہ کلام نہیں کرنا چاہتے ایسے لوگ، کہتے پیچھے رہو، دھتکار رہو، ہچ ہچ ہچ، ان کو لے جاؤ پیچھے. پھر لگ رہا ہے اللہ کو ان پہ بڑا غصہ ہے. وجہ دیکھیے کون لوگ ہیں یہ. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا. دین کا مذاق کرتے تھے، دینداروں کے لطیفے بناتے تھے، یہاں تک کہ ان کی عزت نے تمہیں یہ تک بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں. یعنی تم یہ بھول گئے کہ تم ان کا مذاق اللہ کے نام پہ اڑا رہے ہو، تو اللہ بھی تو تم سے اس کا بدلہ لے سکتا ہے. اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا کہ وہ ہی کامیاب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. اب حسب تم انما خلقناکم عبسا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں؟ یہ ہے وہ آیت. ایک صحابی نے ایک موقع پہ سحر زدہ یعنی جن چمٹے ہوئے تھے جس شخص کو اس کے کان میں یہ آیتیں پڑھ کے پھونکی تھی، تو وہ ٹھیک ہو گیا. بستی والے بڑے خوش ہو گئے. بعد میں اللہ کے نبی کے پاس بات گئی، آپ نے کہا، تجھے پتہ کہ اس تیرے ایک دفعہ اس پڑھ کے پھونکنے سے کتنے جن تھے جو جل کے راکھ ہو گئے؟ کیوں جن راکھ ہوئے؟ مقصد حیات بتاتی ہے یہ آیت. یہ ہے اس پارے کی آیت تدبر بھی. کیا میری آپ کی زندگی کا مقصد صرف فن، کھانا پینا؟ ابس ابس کہتے بیکار چیز جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلنے لاؤ. دو سوال ہیں بس، اس پہ آپ بعد میں غور کیجئے گا. میں بیکار پیدا کی گئی ہوں، روز صبح اٹھتی ہوں، بچوں کو اسکول بھیجتی ہوں، گھر صاف کرتی ہوں، کھانا پکاتی ہوں، شام کو پھر بچے آ جاتے ہیں، پھر وہی کھیل چلتا ہی رہتا ہے روز روز. کیا یہ اس لیے گھر گھر کھیل رہے ہیں ہم سب؟ کیا میری آپ کی زندگی یہ کہ روز صبح اٹھ کے فجر پڑھ لیں، پھر ظہر پڑھ لیں، پھر عصر پڑھ لیں، پھر عشاء پڑھ لیں، ختم؟ یہ تو مقصد نہیں ہے. ہاں یہ مقصد کے حصول کے ذریعے تو ہو سکتے ہیں، مقصد تو کچھ اور تھا، وہ بھول گیا آج کا انسان. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کب تک مجھ سے دور جاؤ گے؟ اس پہ ایک جملہ یاد آ جاتا ہے جو بچپن سے ہم نے محاورتاً سنا ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، 100 دن چور کے، 1 دن شاہ کا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، سوچئے، ہاتھوں میں سنگلیاں ڈالی ہوئی اللہ کی طرف پیش کیے جا رہے ہیں لوگ. آئے نہیں، لائے گئے، بلائے گئے، پکڑے گئے، پکڑو ان کے وارنٹ جاری کر دو. وہ رب جو فتعال اللہ الملک الحق، پس والا برتر ہے وہ ذات اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش عظیم کا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. پہلا جملہ کیا تھا؟ قد افلح المؤمنون. آخری کیا ہے؟ انہ لا یفلح الکافرون. تو یہ دو مختلف رویے ہیں اور دو مختلف انجام ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان والا اور کافر ایک ہی جیسا جی اور ایک جیسا مرے؟ اس لیے پھر آخر میں دعا سکھا دی، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے زیادہ رحیم ہے. यानी सिर्फ अल्लाह के रहम से ही एक बंदा बचेगा वरना नहीं बचेगा। तिलावत सुनते हैं नायतों की और अपना मुहासबा करेंगे।
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.